नमस्कार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या यशवाणीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, शिक्षणामुळे सद्गुण आणि सत्प्रवृत्तीचा विकास होतो आणि शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या प्रत्येकापर्यंत ही ज्ञानाची गंगा घरोघरी पोहोचवण्यासाठी आमचा हा प्रयत्न म्हणजे यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचं यशवाणी. आज अभ्यासच नाही तर विज्ञानाच्या रोज बदलणाऱ्या या शैक्षणिक युगात आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या छंदातून आवडीतून काम आणि व्याप सांभाळून शिक्षणाचा मार्ग दाखवित आहोत. त्यासाठीच ऐका विविध अभ्यासक्रमांचं मार्गदर्शन यशवाणीमध्ये, अर्थातच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या यशवाणीमध्ये. यशवाणी ऐकण्यासाठी आपण आमची वेबसाईट ओपन केली आहे ycmou.digitalyuniversity.ac. ऐकत रहा यशवाणी. यशवाणी कार्यक्रम आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य आहे गिरीश गवळी यांचं, निर्मिती सहाय्यक धनंजय देशमुख, तंत्र निर्देशन अभय कुलकर्णी यांचं आणि कार्यक्रम संयोजक आहेत प्रकाश सापनर सर. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण प्रोग्रामिंग कन्स्ट्रक्ट इन जावा याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन ऐकणार आहात आणि यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत जगज्योती माहुल मॅडम. त्यांचं शिक्षण बीएससी, आयटी, एमसीए, एमफिल त्यांनी केलेलं आहे कॉम्प्युटर सायन्समध्ये आणि ज्युनियर कन्सल्टंट म्हणून त्या वायसीएमओमध्ये कार्यरत आहेत. आजचा विषय आहे, पुन्हा एकदा मी सांगते, प्रोग्रामिंग कन्स्ट्रक्ट इन जावा. मॅडम, आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत.
थैंक यू मॅडम.
आज आप ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताने वाले हैं?
हाँ जी मैम, एक्चुअली लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जावा क्या है और उसका हिस्ट्री और कैसे हम उसमें आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे यूज करता है जावा, वो हमने किया था. नाउ अपन रियल जावा की प्रोग्रामिंग पर आते हैं.
ओके.
तो शुरुआत क्योंकि हम सिंपल प्रोग्रामिंग से करते हैं तो वही एकदम सिंपल वाले स्टेप से हम शुरू करेंगे. फिर उसके बाद में अपन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे वो इम्प्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले अपन सिंपल सिंपल प्रोग्राम लेकर के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट शुरू करते हैं.
ओके
ओके. तो सबसे पहले हम एक वेरी फर्स्ट फ्यू लाइन का एक सिंपल प्रोग्राम मैं रीड करती हूँ. उसी को फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते जाती हूँ तो उसमें जितने भी कंस्ट्रक्ट होंगे हम सब उसको एक साथ समझ सकते हैं. ओके. तो प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन, जैसे हमने उस दिन भी बताया था कि जावा में जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमेशा एक क्लास बनाते हैं. मिनिमम एक क्लास रिक्वायर होती है बनाने के लिए. तो क्लास बनाई है, ये कैसे पता चलेगा? क्लास कीवर्ड से पता चलेगा. तो हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, देन जो भी हम क्लास का नेम देना चाहते हैं, जो जिस भी नेम से हम क्लास को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वी पुट दिस. तो पहले हमने फर्स्ट प्रोग्राम जब बनाया था तो क्लास फर्स्ट नाम दिया था. नाउ दिस टाइम वी शुड डू क्लास सेकंड, कि हमें रिमेम्बर रहेगा. इसलिए तो क्लास CLASS क्लास, ये कीवर्ड हमने लिखाया. देन फिर हमने लिखा सेकंड. सेकंड इज द क्लास का नेम. ओके. देन हमने ब्रेजेस स्टार्ट किए, मीन्स वो कोष्टक स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस. नाउ यहां से फिर हम शुरू करते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन हमें बनाना ही पड़ेगा क्लास में. तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो वही सब हम पूरा सिंटेक्स लिखते हैं. पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये चारों कीवर्ड फिक्स हैं. जब भी मेन फंक्शन लिखेंगे तो ये चारों कीवर्ड हम इसी सीक्वेंस में और इसी ऑर्डर में लिखेंगे. पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन. देन उसमें आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्क्स. देन अब हम प्रोग्राम क्या करवाना चाहते हैं वो प्रोग्राम के लिए हम आगे लिखते हैं. तो यहाँ पे फिर से हमने ब्रेजेस स्टार्ट किए. देन अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखी इंट एक्स. इंट मीन्स INT, इंट. ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में भी. तो इंट स्पेस लगा करके एक्स. एक्स इज अ वेरिएबल. एंड देन इक्वल साइन. देन कोई भी नंबर हम पुट कर देंगे. सपोज आई पुट 90. ओके. देन इंट वाई इक्वल्स टू कुछ भी, जैसे कि 100 या कुछ भी नंबर. देन सेमीकॉलन. सेमीकॉलन क्या होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है. ओके. देन इसके बाद हमने लिखा इंट जेड इक्वल्स टू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सेमीकॉलन। ओके, अभी मैंने सिर्फ तीन स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इंट एक्स इक्वल्स टू 90 सेमीकॉलन, इंट वाई इक्वल्स टू 10 सेमीकॉलन, इंट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई देन सेमीकॉलन। ओके, देन इसके बाद मुझे क्योंकि यूजर को प्रॉम्प्ट करना है, आउटपुट देना है, तो लिखा है स्ट्रिंग, तो हम आउटपुट देने के लिए जैसे हमने पहले भी पढ़ा था तो वही हम लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इक्वल्स टू प्रिंट एल एन एंड डबल कोट्स में द वैल्यू ऑफ जेड इज देन डबल कोट्स क्लोज देन जेड प्लस साइज सिंबल लगा करके जेड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकॉलन। देन हमने दो ब्रेजेस लगाए थे, दोनों ब्रेजेस हम बंद करेंगे। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस स्टेटमेंट का क्या मतलब है और हम क्यों यूज कर रहे हैं या हमें कब कैसे यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेटमेंट थी क्लास सेकंड, क्लास कीवर्ड था जिससे पता चलेगा कंपाइलर को कि हम ये क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका की नाम है सेकंड। देन ब्रेजेस स्टार्ट किया मींस क्लास की डेफिनेशन की क्लास के अंदर क्या क्या है, क्लास का बॉडी हम डिफाइन कर रहे हैं। अब क्लास के अंदर जो भी हम लिखने वाले हैं, तो क्लास के अंदर हम एक मेन फंक्शन बना रहे हैं सबसे पहले। उस मेन फंक्शन में हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसका की मीनिंग मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। पब्लिक इसलिए क्योंकि ये जो फंक्शन है इसे कहीं भी कॉल किया जा सकता है, किसी और दूसरी क्लास में भी, किसी और दूसरे प्रोग्राम में भी, इसलिए पब्लिक बनाया। स्टैटिक इसलिए ताकि इसे बार बार जब भी हम रन करें तो उसकी पुरानी वाली वैल्यू वो रिपीट ना करे, स्टैटिक रहे। वॉइड मींस कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं मगर अगर वॉइड लगाया तो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। देन मेन, मेन इज द कीवर्ड आइडेंटिफाई ये कंपाइलर को बताने के लिए कि ये मेन फंक्शन है। देन हमने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास किया है। देन इसके बाद हमने लिखा है इंट एक्स इक्वल्स टू 90 देन सेमीकॉलन, एक ही स्टेटमेंट है ये। अब ये इंट एक्स क्या है, एक्चुअली इंटीजर इज द डेटा टाइप। यहाँ पर इंट आईएनटी जो है वो है, वो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर, और एक्स रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को, x इज दी वेरिएबल नेम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज वॉट की वॉट इज वेरिएबल। सबसे पहले जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस प्रोग्राम के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत होगी या कितने डेटा हमें यूज करना है। तो जो डेटा हम, जितने डेटा यूज करेंगे हम उतने वेरिएबल यूज करेंगे। जैसे कि हम कोई वैल्यू पास करेंगे प्रोग्राम में, कुछ इनपुट डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, तो वो वैल्यू कहीं तो भी कंप्यूटर में स्टोर होगी। तो कंप्यूटर में जब वो वैल्यू स्टोर होगी तो उसको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई कंटेनर तो चाहिए, तो उस कंटेनर के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल। मीन्स एज अ डेफिनेशन वी कैन से वेरिएबल्स आर लोकेशंस इन द मेमोरी दैट कैन होल्ड वैल्यूज। जो भी वैल्यू यूजर देंगे या प्रोग्राम में देंगे वो सब वैल्यूज को होल्ड किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कंप्यूटर की मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो कि डेटा की वैल्यू को होल्ड करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी मेमोरी की लोकेशन को। इज इट ओके? ओके, देन तो यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स, और इसके पहले जो हमने लिखा है वो क्या है, आईएनटी इंटीजर। इट मींस एक्स में, एक्स तो मींस वो लोकेशन है, वो लोकेशन को हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं जहां पर की वैल्यू डालेंगे, डेटा पुट करेंगे। मगर डेटा पुट करेंगे तो डेटा किस टाइप का पुट करेंगे, मींस इस एक्स के अंदर किस तरीके का डेटा आएगा, किस तरीके का से मतलब होता है कि वो इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोटिंग वैल्यू होगा, कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा। जैसे कि हमने अभी 90 डालना है एक्स के अंदर, तो 90 क्या है, ये मैथमेटिकल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हमने एक्स के आगे लिखा इंट। मींस कंपाइलर को ये स्टेटमेंट ये बताएगा कि एक्स एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। तो जब भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड की जाती है तो ये मीन्स बाय डिफॉल्ट 16 बिट मेमोरी में जाकर के ऑक्यूपाई करता है कंप्यूटर की मेमोरी 16 बिट्स. ओके, तो 16 बिट्स की मेमोरी लोकेशन, फिजिकली मेमोरी जो कंप्यूटर में होती है, वो इस एक्स को अलॉटेड हो जाएगी. फिर जब भी हम उसमें वैल्यू डालेंगे, जैसे हम 90 डाली तो वो 90 स्टोर होगा उस 16 बिट के अंदर. वैसे ही 16 बिट वरी करता है, 32 बिट भी स्टोर करता है कहीं पर इंटीजर, और लॉन्ग होता है तो 64 बिट भी स्टोर करता है, और शॉर्ट इंटीजर होता है तो 16 बिट करता है. हाँ, बाय डिफॉल्ट जैसे कि हम कह सकते हैं कि 32 बिट नॉर्मली यूजुअली जो कंपाइलर वर्क करते हैं वो इंटीजर को 32 बिट देते हैं. तो 32 बिट के अंदर जितनी भी एक्स की वैल्यू जो भी आप पुट करेंगे वो 32 बिट्स के अंदर आ जाती है और वो वहां पर स्टोर हो जाएगी मेमोरी के अंदर. मगर यूजर या प्रोग्रामर को कैसे पता चलेगा कि वो मेमोरी में किधर स्टोर है, इस एक्स से पता चलेगा. क्योंकि इस एक्स को हमने वेरिएबल बनाया. तो दिस इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल. वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम और सेमीकोलन. तो डेटा टाइप तो वो कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा वो हमें लिखना है. ये इंटीजर भी हो सकती है अगर हमने इंटीजर वैल्यू डालनी है, फ्लोटिंग भी हो सकती है, फ्लोट कीवर्ड हम लिख सकते हैं अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यूज डालनी है, हम बूलियन भी लगा सकते हैं अगर हमें ट्रू फॉल्स में डेटा स्टोर करवाना है, हम कैरेक्टर भी लगा सकते हैं CHAR केयर अगर हमें सिंबल कोई एक कैरेक्टर स्टोर कराना है, और हमें अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करवाने हैं जैसे किसी का नेम स्टोर करवाना है तो हम डबल कोट्स में वो नेम डालेंगे और उसे स्ट्रिंग देंगे. रिप्रेजेंट जो डेटा टाइप देंगे वो डेटा टाइप का नाम होगा स्ट्रिंग. ठीक है, तो अभी हमने इंटीजर दिया क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू डालनी है. एक्स एक वेरिएबल है और हमने वैल्यू भी साथ में डाल दी इक्वल टू करके, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90. और सेमीकोलन मतलब कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कि यही एक स्टेटमेंट है जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करवाती है और साथ में वेरिएबल में वैल्यू भी डलवा रही है. ये जो इतना सा अगर हमने लिखा इंट एक्स सेमीकोलन, तो इसका मतलब होगा कि इंटीजर वैल्यू हमने स्टोर करवाने वाले हैं एक्स के अंदर, इसको कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन. बट अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट एक्स इक्वल्स टू 90, इट मीन्स डिक्लेरेशन के साथ साथ हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, मीन्स वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट कहलाएगी असाइनिंग और इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट. ओके, देन इन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेम इन वाई. यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका की नेम है वाई और उसकी वैल्यू हमने स्टोर की 10, देन सेमीकोलन. सेमीकोलन मीन्स स्टेटमेंट टर्मिनेट. देन थर्ड इंट जेड और जेड की वैल्यू हमने इक्वल करके लिखा है एक्स प्लस वाई, मीन्स एक्स के अंदर जो हमने पहले वैल्यू डाली है 90, वाई के अंदर जो वैल्यू डाली है हमने 10, वो दोनों का एडिशन होगा, देन वो ट्रांसफर होगी जेड के अंदर. और फिर हमने यहाँ पर Z को यूजर को आउटपुट दिया है, तो 90 प्लस 10 100, तो इसका आउटपुट आएगा 100. इस तरीके से हम इस प्रोग्राम में काम किया है. अब वेरिएबल नेम हम कैसे देते हैं, बस हमें इतना ध्यान रखना होता है वेरिएबल का नेम देने के लिए, जैसे हमने X दिया है, मगर फॉर द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हम जिस पर्पज से बना रहे हैं प्रोग्राम हमें उसी तरीके से नेम देना चाहिए. जैसे हमें एडिशन करना है तो डेटा 1, डेटा 2, वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरीके से हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं. क्योंकि जब कभी बहुत सारे वेरिएबल हो जाएं तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि ए किसके लिए था, बी किसके लिए था, ऐसे सब. और जैसे कि और इसमें कैसे होता है, वेरिएबल के नेम में हम स्पेस नहीं लगाते. स्पेस अगर लगाया वेरिएबल नेम देते वक्त तो वो एरर होगी, सिंटैक्स एरर होगी. इसलिए वेरिएबल का नेम देते वक्त स्पेस नहीं लगाना. अगर हमें दो वर्ड्स में सेपरेशन दिखाना है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, तो स्टू नेम हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्टू नेम, तो हम स्टू लिख करके अंडरस्कोर लगा सकते हैं. ओके, डॉलर साइन ऑल्सो हम लगा सकते हैं. ठीक है, बट डॉलर साइन या ये हम स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे, हमेशा वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा कैरेक्टर से। इसमें हम नंबर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस टू नेम वन, इस टू नेम टू, और अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बट स्पेस इज नॉट अलाउड और एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउड नहीं होते। और जावा के अंदर तो, जावा तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए अगर हमने कैपिटल लेटर में लिखा नेम इस टू नेम, तो अगर नेम का एन कैपिटल है और कोई दूसरा अगर हमने लिखा इस टू नेम जिसमें कि नेम का एन स्मॉल है, तो दोनों वेरिएबल नेम अलग अलग हो गए वो। तो क्योंकि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस सीक्वेंस में या जिस केस में हमने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है, उसी सीक्वेंस में या उसी केस में हम उसको यूज करें आगे भी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होता है, और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइज, अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसके अंदर int x equals to 90, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, दोनों स्टेटमेंट एक ही है में है। अगर हम अलग अलग करते तो डिक्लेरेशन के लिए लिखते int x सेमीकोलन, इसे कहेंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, देन x equals to 90 देन सेमीकोलन, इसे कहेंगे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। दोनों में से हम दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा अभी int x equals to 90 ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसे कि नेम किसी का स्टोर करना है अगर, तो हम उसको डेटा टाइप यूज करेंगे स्ट्रिंग। जब हम स्ट्रिंग यूज करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू देते हैं, जैसे कि इंटीजर की वैल्यू हमने किसी भी कोट्स के अंदर नहीं दी, x इक्वल टू 90 सीधे सीधे ऐसे लिख दिया। मगर जैसे कि मुझे स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, तो स्टू नेम इक्वल टू देन डबल कोट्स के अंदर मुझे नेम डालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। मगर अगर मुझे सिर्फ एक ही कैरेक्टर डालना है ए बी सी, तो मुझे सिंगल कोट में डालना पड़ेगा। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, सिंगल कोट्स में जब हम वैल्यू देते हैं तो वो कैरेक्टर कहलाती है और वो एक ही कैरेक्टर दे पाते, बट इफ वी आर गिविंग कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर, तो हम वो स्ट्रिंग होगी और डबल कोट्स में उसे देना पड़ेगा। देन इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सप्रेशन। ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, और इन सबको बोलते हैं स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन क्या होती है, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था x प्लस वाई, ठीक है, तो अब x प्लस वाई क्या है, x इज वेरिएबल और y भी वेरिएबल है, जो कि हमने पहले ऊपर डिक्लेयर किए थे, ठीक है। मगर एक पर्टिकुलर अगर एक स्टेटमेंट में देखा जाए अलग से, एक तो ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मीन्स x और y यहाँ पर ऑपरेंड है, और ये जो प्लस बीच में सिंबल लगाया है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। ओके, प्लस सिंबल जो लगाया है वो है ऑपरेटर, जो कि अरिथमेटिक टाइप का है। ओके, और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, देन फिर इसकी वैल्यू जेड के अंडर ट्रांसफर होगी, जैसे कि मैंने इसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर आर दी स्पेशल सिंबल्स, जो कि इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और इसके अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया एक्स प्लस वाई, तो प्लस का मतलब वही एडिशन जो हम करते हैं कि एक्स की वैल्यू को ऐड करो वाई की वैल्यू में। और ऑपरेंड क्या होता है, जिनके की ऊपर हम ऑपरेटर को वर्क करवाते, इम्प्लीमेंट करवाते। जैसे कि यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है, प्लस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, ये फाइव ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। एडिशन ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए वैल्यूज को, डिवीजन डिवीजन करने के लिए, और मॉड्यूलस मॉड्यूल करने के लिए। मॉड्यूलस और डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने लिखा 10 डिवाइड बाय 5, तो उसकी वैल्यू आएगी क्या, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 2, रिजल्ट मेरे पास 2 आना चाहिए। 10 डिवाइड बाय 5 मीन्स 10 में 5 को डिवाइड करो, तो वो दो वैल्यू आने चाहिए, उसका रिजल्ट मुझे दो मिलना चाहिए। मगर अगर मैंने लिखा 10 मोड 2 तो मुझे उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए 0, क्योंकि मोड उसका मॉड्यूलस तो 0 ही है ना। या जैसे मैंने लिखा 10 मोड 6 तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए 1। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और हमेशा ये एक छोटा सा पॉइंट है फॉर रिमेम्बरेंस की मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा और हमेशा इंटीजर वैल्यू पर ही काम करता है। इंटीजर वेरिएबल पर ही हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। फ्लोट वाले वेरिएबल के या वो वेरिएबल जिनको जिसका की डेटा टाइप हमने फ्लोट यूज किया है उस पर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोट अगर हमने यूज किया इट मीन्स वी आर यूजिंग पॉइंट, हम पॉइंट्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो फिर मोड आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर तो रिमाइंडर हम जीरो ही लेकर तब तक उसको डिवाइड करते जाते ना, तब तक की मॉड्यूल तब तक की रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। इसलिए मॉड्यूलस हमेशा इंटीजर पर ही इम्प्लीमेंट किया जाता है और फ्लोट पर नहीं किया जाता। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे लिखा ही था, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। इंट एक्स इक्वल्स टू 90, वाई इक्वल्स टू 10, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सेमी कॉलन। देन अगेन एक और वेरिएबल हम लेते हैं इंट वाई इक्वल सॉरी इंट ए ले लेते हैं, इंट ए इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। देन हमने वहां पर एक स्टेटमेंट लिखी थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो उसी के नीचे एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दी सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ पे y की वैल्यू रिप्रेजेंट करवा देते हैं। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले प्रोग्राम में भी देखा था, फर्स्ट प्रोग्राम में, जब भी हम जावा का प्रोग्राम सेव करते हैं तो हमें सेव करते वक्त वही नाम फाइल का देना पड़ता है जो कि क्लास का नेम है। तो हमने इस वाली क्लास का नेम रखा है सेकंड, तो हमें इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए भी फाइल नेम देना पड़ेगा सेकंड, सेकंड डॉट जावा। इसके बाद जब हम अगर डोज प्रॉम्प्ट अगर हम एडिटर यूज कर रहे हैं जावा का एडिटर, तब तो वहां पे सिंपल रन पर क्लिक कर देंगे और रन हो जाएगा। मगर अगर हमने सिर्फ जेडीके ही इंस्टॉल किया हुआ है और हम प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं तो हमें डोज प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट जिसे बोलते वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे जाकर के हमें लिखना पड़ेगा जावा सी और क्लास का नाम मीन्स फाइल का नाम जो कि हमने दिया है सेकंड, तो हम लिखेंगे जावा सी सेकंड डॉट जावा। इट मीन्स जावा सी का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब हम कंपाइल करते हैं तो उसे हम कंपाइल के बाद जो फाइल बनती है उसे बोलते हैं हम जावा सी। तो जावा सी डॉट जावा सी सेकंड डॉट जावा, तो उससे कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर मशीनी कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले हमारा जो कंपाइल हुआ है वो फाइल बाइट्स कोड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद में उसे इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करके मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए अब सेकंड स्टेप हम लिखेंगे जावा और सेकंड फाइल का नाम, सेकंड दिया है तो जावा सेकंड। फर्स्ट हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड क्या दिया था जावा सी सेकंड डॉट जावा, देन सेकंड लाइन में दिया जावा सेकंड, देन थर्ड हमने उसको कॉल किया। तो जब जैसे ही हम जावा इसको रन करेंगे फाइल को तो हमें वैल्यूज दिखाई देगी, एक्स की वैल्यू द एडिशन इज 100 और द सब्ट्रैक्शन इज 80, ये हमारा रिजल्ट आएगा। ओके तो अभी हमने इस प्रोग्राम के अंदर ये देखा कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनको वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, और एरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी यही है, जो इक्वल साइन हम जो लगाते हैं इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। जैसे कि अभी हमने इसमें किया था y इक्वल्स टू 10, टेन जो वैल्यू है वो किस में आई y वेरिएबल के अंदर। जैसे कि हमने लिखा था x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो पहले x और y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, एडिशन होगा, देन फिर जेड में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये काम होता है ट्रांसफर करने का, असाइन करने का, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ओके, देन इसके बाद होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि एक जैसे कि हमने लिखा, हम इसी प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट और ऐड कर देते हैं, जैसे कि इंट ए इक्वल्स टू 1, इंट बी इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन लगानी होगी पर। ओके, देन इंट सी इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, एडिशन जो ऑपरेटर था हमारा एड जिससे हम किया था, तो उसे दो बार हमने लिखा प्लस प्लस बी, देन सेमीकोलन। देन अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंट डी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस सेमीकोलन, देन हमने लिखा सी प्लस प्लस। इतने सारे वेरिएशन हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें एक ही बार में सारा कंफ्यूजन ना रहे और इसके सारे एस्पेक्ट हम क्लियर कर पाए। ओके, तो अभी हमने सिर्फ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, इंट ए जिसकी वैल्यू हमने दी 1, इंट बी जिसकी वैल्यू दी हमने 2। देन हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, जिसकी की वैल्यू हमने डाली है बी की जो वैल्यू है उसे प्लस करवा के, प्लस प्लस बी ऐसा करके। मीन्स पहले इसमें ध्यान देने के लिए यह है कि हमने इंट सी इक्वल्स टू प्लस प्लस मीन्स एडिशन एडिशन वाला साइन देन बी लिखा है, तो बी वेरिएबल के पहले हमने एडिशन साइन लगाए हैं। और नीचे वाला जो स्टेटमेंट है इंट डी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, इसमें ए के बाद प्लस प्लस लिखा है। एक्चुअली इंक्रीमेंट ऑपरेटर ना दो टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये जो प्लस प्लस बी लिखा है दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट, और ये जो हमने लिखा ए प्लस प्लस दैट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो प्री और पोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जबकि जब भी एक्सप्रेशन में हम इन्हें लिखते हैं तो प्री में तो जिस भी वेरिएबल को प्री इंक्रीमेंट किया है तो पहले उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी देन असाइन होगी, देन असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। मगर पोस्ट इंक्रीमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर पहले वर्क करेगा देन फिर उस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ये डिफरेंस आता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, प्रोग्राम की जैसी रिक्वायरमेंट है हम प्री और पोस्ट को यूज करते हैं। अभी इस एग्जांपल से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू रखी है 2। ओके, देन हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, वही आउटपुट कराने के लिए लिखा है ए इक्वल्स टू प्लस ए, बी इक्वल्स टू प्लस बी, सी इक्वल्स टू प्लस सी और डी इक्वल्स टू प्लस डी। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो अब ए की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि ए के अंदर अभी 1 है, ए की वैल्यू अभी 1 है और बी की वैल्यू अभी 2 है। फिर सी की वैल्यू जो हमने लिखा है इंट सी इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, तो अभी ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमें बी की वैल्यू कितनी मिल रही है 2, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है बी इक्वल्स टू 2। मगर इस सी की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए अगर हम ऐसा लिखते हैं सी इक्वल्स टू बी, तो इट मीन्स बी की वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देता सी को। तो अगर बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू भी 2 हो जाती। मगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस बी, तो इट मीन्स पहले ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वर्क करेगा। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है कि ये जिस भी वेरिएबल के आगे लगा हो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की जाए। ओके, तो अगर बी की वैल्यू 2 है तो प्लस 1 इसमें किया जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, नाउ बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू फिर क्या असाइन होगी 3। तो यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया बी प्लस 1, बी प्लस 1 लिखते हैं तो इट मीन्स बी की वैल्यू 2 और प्लस 1 उसमें कर दिया जाए। हमने ऐसा किया प्लस प्लस बी, बी की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी, प्लस प्लस 1, प्लस प्लस का मतलब इसमें 1 इंक्रीमेंट किया जाए, तो 1 इंक्रीमेंट करके बी की वैल्यू हो गई 3 और फिर ये असाइन हो गई वेरिएबल सी में। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट डी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। अगर हम ऊपर वाले स्टेटमेंट के जैसे काम करते हैं तो पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होती देन फिर डी में ट्रांसफर होती, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट है, इट मीन्स पहले ए की वैल्यू डी में ट्रांसफर हो जाएगी, देन फिर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. तो ए की वैल्यू अभी तक तो थी ए की वैल्यू थी 1, तो 1 ट्रांसफर हो जाएगा डी के अंदर, देन फिर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से और ए की वैल्यू हो जाएगी 2. ओके, तो अब जब हम इसका आउटपुट देखेंगे, और सॉरी नीचे वाली स्टेटमेंट में भी हमने लिखा है C++, तो C की वैल्यू अभी 3 हो गई है, B की वैल्यू प्लस होकर के 3 हो गई है, देन फिर इसमें +++ किया है. तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट A की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 2, B की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए 3, C की वैल्यू मिलनी चाहिए 4 और D की वैल्यू मिलनी चाहिए हमें 1. वो इसलिए क्योंकि हमने ए की डी के अंदर जो ए की वैल्यू ट्रांसफर की है, वो सिंपल जो ए की वैल्यू हमने 1 जो असाइन की थी वही ट्रांसफर की है, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट तो हमने ट्रांसफर असाइन करने के बाद लगाया है. इसलिए डी की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, जबकि सी की वैल्यू बी की जो भी वैल्यू थी उससे 1 इंक्रीमेंट हो गई. तो ये डिफरेंस है प्री और पोस्ट के अंदर. तो जैसे हम प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट यूज करते हैं, एज इट इज हम इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, वैसे डिक्रीमेंट भी यूज करते हैं. डिक्रीमेंट मीन्स 1 से माइनस कर देना वैल्यू को, एक वैल्यू उसकी कम कर दी जाए, जैसे कि +1 किया जाता है वैसे ही -1 किया जाए. ओके, देन इसके बाद होता है कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर जब हम किसी भी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं इक्वल इक्वल, इफ ए इक्वल बी, इफ ए इज नॉट इक्वल बी, इफ 5 इज ग्रेटर देन 6, और या ट्रू फॉल्स में जिसका रिजल्ट आता है वो कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं, जिसमें कि इक्वल नॉट इक्वल, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये 6 ऑपरेटर होते हैं. देन इसके बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर दो एक्सप्रेशंस को ऐड करने के भी काम आता है, एड इन द सेंस उनकी वैल्यूज को, जैसे कि एंड और एक्स और नॉट. जैसे कि हमने लिखा जेंडर इक्वल्स टू 1, या फिर जेंडर इक्वल्स टू मेल एंड एज इज ग्रेटर देन 6, तो जिसकी भी एज ग्रेटर देन 60 होगी और जेंडर जिसका मेल होगा, तो बीच में हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया. तो एंड ऑपरेटर लगा के कि ये दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू होंगे, दोनों एंड का मतलब दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू हो, और मीन्स दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू हो, नॉट मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू ना हो, तो वो हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. इसी तरह से बिटवाइज भी ऑपरेटर भी होता है. बिटवाइज एंड और एक्स और वैल्यूज को लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करने के भी काम आता है, शिफ्ट वाइज ऑपरेटर. देन अभी हमने जो ऑपरेटर पढ़े वो है एडिशन ऑपरेटर, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर. अब इतने सारे ऑपरेटर अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो हमें कैसे पता कि किस ऑपरेटर का मतलब प्रायोरिटी किसे दी जाएगी,
यूज कैसे किया जाए.
हाँ, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस. ये फिक्स है, डिसाइडेड है कि अगर किसी स्टेटमेंट में इतने सारे ऑपरेटर आए हुए हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर. किस ऑर्डर में लिखा जाएगा या किस ऑर्डर में उसे सॉल्व किया जाएगा या फिर उसका प्रेसिडेंस क्या है. तो सबसे पहले जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते थे बॉड मॉस का रूल पढ़ते थे, जिसमें कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे, तो सेम इट इज यहाँ पे भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं. ब्रैकेट मीन्स कुछ एरे में डिक्लेयर किया हुआ है या फंक्शन हमने यूज किया हुआ है, तो वो सब ब्रैकेट्स हमें यूज करते हैं सबसे पहले. देन इसके बाद हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है. देन इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व किए जाते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, देन मॉड्यूलस, देन फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अरिथमेटिक में भी क्योंकि इनका ऑर्डर फिक्स है, सबसे हायर ऑर्डर होता है मल्टीप्लीकेशन का. मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले सॉल्व किया जाता है. अगर किसी भी स्टेटमेंट में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों साथ हैं तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया जाता है, देन फिर एडिशन सॉल्व किया जाएगा. इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर में, जैसे कि मैं कंपैरिजन बोल रही थी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉल्व किए जाते हैं. देन फिर इसके बाद एंड और जो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर बताया वो सॉल्व होते हैं, एंड और एक्स और. मीन्स हायर प्रेसिडेंस हम देते हैं ब्रैकेट्स को, देन उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं. तो ये जो मैंने अभी बताया ये प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे मतलब कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट शुरू करने से पहले ये छोटे छोटे कुछ स्टेप्स थे जो कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें काम आते हैं. ठीक है, तो अभी ये टॉपिक में हमने सिर्फ ये पढ़ा कि वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं और किस कैसे सिंटैक्स हम यूज करते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हैं और कैसे उसमें ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग को कैसे करते हैं, सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करते हैं, ब्रांचिंग, डिसीजन या इटरेशन करते हैं. तो वो हम पढ़ने वाले हैं. बट आई थिंक कि इसके पहले हम दो मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर हम इसके बाद शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग. ओके,
यस मैडम. ओके, विद्यार्थी मित्र मित्रांनो, आजच्या यशवाणीमध्ये आपण जगज्योती माहुल मॅडम यांच्याकडनं प्रोग्रामिंग कन्स्ट्रक्ट इन जावा याविषयी माहिती घेत आहात. याविषयी अजून काही आपण ऐकणार आहात, पण काही क्षणानंतर. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचं आपण ऐकत आहात यशवाणी. विद्यार्थी मित्र मित्रांनो, आजच्या यशवाणीमध्ये जगज्योती माहुल मॅडम आपल्याला प्रोग्रामिंग कन्स्ट्रक्ट इन जावा याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करत आहेत. मॅडम, अभी वापिस हम लोग मिलते हैं.
Yes,
हाँ, अभी आप क्या बात करने वाले हैं?
अभी हम ये बात करने वाले हैं कि अब नेक्स्ट हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में कंस्ट्रक्ट कैसे यूज करते हैं. एक्चुअली अभी हमने जितने भी दो तीन प्रोग्राम देखे उन प्रोग्राम में कैसा था कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन चल रहा था. जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जब भी हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो कंपाइल होता है प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेटमेंट से. ओके, और जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं मीन्स इंटरप्रेट करने के बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन के फर्स्ट लाइन से. ओके, मगर अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम देखे उसमें एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं था जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो. सभी स्टेटमेंट वो भी सिक्वेंशली एग्जीक्यूट हो रहे थे. इट मीन्स अभी जो हमने प्रोग्रामिंग की वो हमने सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग की, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें प्रोग्राम में सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करनी ही पड़े. हम जंपिंग प्रोग्रामिंग मीन्स डिसीजन मेकिंग डिसीजन बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज नहीं हो, ऐसा भी होता है. और हम ऐसा भी कर सकते हैं, इटरेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इटरेटिव प्रोग्रामिंग कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होने तक या ट्रू होने पर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर ऑफ टाइम्स एन नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होता रहे. सपोज कीजिए कि मुझे मेरा नाम लिखना है 10 times, तो क्या मैं बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करके अपना नेम 10 times स्टेटमेंट लिख के दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं. तो मैं क्या करूंगी उसके लिए कि 10 कुछ बना दूंगी, कोई कंडीशन ऐसी लगा दूंगी. हाँ, कोई कंडीशन ऐसी लगा दूंगी या जिसमें कि एन नंबर डिसाइड कर दिए जाए कि 10 times ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना ही चाहिए. ओके, या सपोज कीजिए जैसे कि मुझे रिजल्ट डिक्लेयर करना है स्टूडेंट का, रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो अब मुझे ऐसा है कि इतने नंबर्स हैं, इतने या इतने पर्टिकुलर मार्क्स आने पर, जैसे कि स्टूडेंट के अगर 40 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज पास नहीं है. तो जब भी 40 से ज्यादा मार्क्स आए तो ही पास होना चाहिए ना, 40 से कम आए तो पास नहीं होना चाहिए। तो मीन्स मुझे ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि मार्क्स अगर 40 से कम है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो, या कोई और ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, या इससे ज्यादा है तो इसे, इस प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग। ओके, तो सिक्वेंशियल हम देख चुके हैं, तो अब हम शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग। तो इसमें सबसे पहले होता है इफ कंस्ट्रक्ट। इफ कंस्ट्रक्ट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इफ एल्स, जब भी हम जनरल वे में भी कुछ बात करते हैं कि इफ यू गेट 40% मार्क्स देन ओनली यू विल बी पास्ड इन एग्जाम, अदरवाइज यू विल फेल, ऐसा। तो अगर हमें इस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर करना है जैसे कि, तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, वही ऊपर एक क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास कीवर्ड लिख करके, क्लास देन क्लास का नेम जो भी हमने लिखा, सपोज मैंने लिखा रिजल्ट, क्लास रिजल्ट ब्रेसेस स्टार्ट, इस ब्रेसेस के अंदर वही हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आर्क्स। अब उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट मार्क्स। अब मार्क्स क्यों? क्योंकि मुझे पता रहे कि ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है। ये वेरिएबल के अंदर मैं मार्क्स स्टोर करवाने वाली हूँ स्टूडेंट के, इसलिए मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे सपोज इनिशियलाइज किया इंट मार्क्स इक्वल्स टू 50 देन सेमीकोलन। तो इट मीन्स मैंने यहाँ पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका की डेटा टाइप है इंटीजर। ओके, और उसकी वैल्यू मैंने डाली है 50। देन इसके बाद मैं यहाँ से शुरू करती हूँ इफ यहाँ पर कीवर्ड है जिसमें कि आई और एफ दोनों ही स्मॉल में आते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। देन हमने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, इस ब्रैकेट के अंदर जिसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लैंग्वेज में, तो वहां पर हमने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन ब्रैकेट क्लोज। मीन्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 का मतलब या तो 50 से ज्यादा हो या 50 के इक्वल हो। ओके, देन फिर मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग करके, स्ट्रिंग रिजल्ट, स्ट्रिंग आर ई एस, ऐसे करके बनाया मैंने एक वेरिएबल, तो उसके अंदर लिखा इक्वल्स टू पास डबल कोट्स के अंदर। कीप रिमेम्बर दिस थिंग कि हमने डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल, जब भी हम वेरिएबल को स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाते हैं तो हमें उसे डबल कोट्स में उसकी वैल्यू पास करनी पड़ती है, और कैरेक्टर बनाते हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू पास करनी पड़ती है, जबकि इंटीजर और फ्लोट में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा ये। देन इसके बाद एक और हमने लिखा एल्स, ये इफ का ब्लॉक खत्म, एल्स लिखा, एल्स के अंदर भी हम ब्रैकेट शुरू कर सकते हैं पैरेंथेसिस, वहां पे हमने लिखा ब्रेजिस स्टार्ट करके आर एस रेस, ये वाला जो वेरिएबल हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था इक्वल्स टू एफ आई ए एल फेल, देन सेमीकोलन क्लोज, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हमने लिखा डबल कोट्स के अंदर स्टूडेंट इज, और कॉन्केटिनेशन प्लस वाला साइन लगा के वो वेरिएबल की वैल्यू हमने कॉल की आर ई एस की, देन ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन देन ब्रेसेस क्लोज। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन क्लास रिजल्ट, कंपाइलर को पता चलेगा कि रिजल्ट नाम का एक क्लास बनाना है। देन हमने वहीं पे मेन डिक्लेयर किया, देन इसके बाद इंट मार्क्स इक्वल टू 50, यहाँ पे हमने ये जो मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी जो कि इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू 50 है, और ये नीचे जो हमने स्ट्रिंग रिजल्ट बनाया इसे भी हम यहीं पे इसके पास ही बना देते हैं, इससे क्या होगा कि एक ही साथ डिक्लेरेशन हो जाएंगे सारे वेरिएबल। तो स्ट्रिंग आर ई एस इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने सॉरी स्ट्रिंग आर ई एस मीन्स ये जो आर ई एस वाला रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यूज करेगा, ऐसा हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। नाउ इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, और अगर इसका स्टेटमेंट जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा कि मार्क्स की वैल्यू चेक की जाएगी पहले। तो अभी हमने मार्क्स की वैल्यू डाली हुई है 50, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई हमारी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। तो इक्वल है हमारे पास, मार्क्स की वैल्यू 50 के इक्वल है, तो मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इफ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे अंदर लिखा है, रिजल्ट इक्वल्स टू पास। फिर इसके बाद में जो एल्स वाला ब्लॉक हमने लिखा है ना इसके नीचे, एल्स रिजल्ट इक्वल्स टू फेल, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मीन्स एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया है तो। तो मीन्स यहाँ पे हमारा डिसीजन मेकिंग हुआ कि अगर कंडीशन चेक हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू 50 ना डाल के 40 डाल दी, ओके। तो अब जब कंपाइलर चेक करेगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, स्टेटमेंट हमने यही रखी है, एक्सप्रेशन यही रखी है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि मार्क्स की वैल्यू अभी 40 डाल दी हमने। जब हमने 40 डाल दी तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो फॉल्स हो गई तो इसका ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एग्जीक्यूट होगा एल्स का ब्लॉक, जिसमें कि हमने रिजल्ट की वैल्यू लिखी रखी हुई है फेल, ठीक है। जब ये होगा तो लास्ट वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउटलाइन, वो प्रिंट करके देगी रिजल्ट की वैल्यू, और अगर हमने यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू 40 डाली हुई है तो रिजल्ट हमारा एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, इसलिए रिजल्ट हमारा फेल आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोग्राम तो पूरा लिखा इतना, मगर कोई पर्टिकुलर ब्लॉक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ही एग्जीक्यूट हम करवा रहे हैं। इसे बोलते हैं इफ। अब इफ में ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी ना कि 50 हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इस तरीके से प्रोग्राम बनाना चाहूँ या रिक्वायरमेंट यूजर की ऐसी हो कि जबकि 40% आए, जैसे कि मार्क्स 40 से ज्यादा और 50 से या 60 से कम होंगे, तो वो होगा सेकंड डिवीजन, और 60 और 70 के बीच में होगा तो वो होगा ए ग्रेड या बी ग्रेड, इस तरह से हम देना चाहते हैं, या 100% या 80 से फिर 100 के बीच में होगा तो ए ग्रेड ए प्लस ग्रेड, इस तरह से देना चाहते हैं, या 40 से कम होगा तो फिर वो फेल होगा। मीन्स अभी हमारे पास कंडीशंस बहुत सारी हैं, अभी तो यहाँ पे कैसा था, फेल या पास, इफ या एल्स, मगर अभी जब कंडीशंस बढ़ जाती हैं हमारे पास एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो फिर हम इफ के साथ लैडर इफ यूज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं इफ, फर्स्ट ब्लॉक तो हम इफ का लिखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे जो कि मैंने लिखी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड लेस देन 50, ऐसा समझ लीजिए 40 से ज्यादा 50 से कम हो, तो यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू res इक्वल्स टू सी ग्रेड सी, तो सी ग्रेड आ जाएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे सी ग्रेड। देन अब मुझे सेकंड कंडीशन डालनी है जिसमें कि बी ग्रेड भी शो करवानी है मुझे, तो मैं यहाँ लिखूंगी एक और कीवर्ड होता है एल्स इफ। देखो ध्यान दीजिए, इसके पहले हमने लिखा था इफ अलग था एक ब्लॉक, फिर दूसरे ब्लॉक में लिखा था एल्स, मगर यहाँ पे हमने क्या किया इफ और कंडीशन दिया, एक और कंडीशन हमें देनी है तो एल्स इफ लिखना पड़ेगा। सिंगल एल्स के साथ हम कंडीशन कभी नहीं देते, या तो इफ के साथ कंडीशन देते हैं या एल्स इफ के साथ कंडीशन देते हैं। तो इसलिए अभी अगर ज्यादा कंडीशन है तो एक ही इफ लगेगा, बाकी फिर एल्स इफ करके हम बहुत सारे कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे एल्स इफ करके मैंने यहाँ पे लगाया मार्क्स अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन इक्वल्स टू एंड लगाना पड़ेगा एंड लेस देन इक्वल्स टू 60, तो हम यहाँ पर इसका ग्रेड दे देते हैं ग्रेड बी, ओके। देन अगेन एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड लेस देन इक्वल्स टू 80। कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो जितनी भी कंडीशंस देंगी वो देनी होगी, वो हम एल्स इफ के अंदर देंगे या इफ के अंदर देंगे, एल्स में नहीं देंगे। तो अभी तक हमने तीन कंडीशन दी है, इफ के अंदर दी है 40 से ज्यादा और 50 से कम हो, एल्स इफ के अंदर दी है 50 से ज्यादा 60 से कम हो, देन एक और एल्स इफ लगाया है 60 से ज्यादा 70 से कम हो। ओके, देन इसके बाद एक और एल्स इफ लगा देते हैं हम, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100, तो ए प्लस ग्रेड, ग्रेड इज ए प्लस रिजल्ट के अंदर। देन फाइनल, क्योंकि फेल भी तो होगा, हो सकता है ना स्टूडेंट जिसका कि 40 से कम होंगे, उसके हम उसका हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर एल्स और रिजल्ट इक्वल्स टू फेल, ऐसा डबल कोट्स के अंदर। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, और अगर हमने अब मार्क्स की वैल्यू सपोज कीजिए रखी है हमने 55, तो 55 में तो अब सबसे पहले चेकिंग होगा इफ का, इफ की स्टेटमेंट है ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 50, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी ना, कि 40 से ज्यादा 50 से कम होना चाहिए, तो ये तो फॉल्स हो गई, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन वो सेकंड ब्लॉक में आएगा जिसमें कि एल्स की, एल्स इफ के अंदर हमने लिखा है ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 60, तो ये 55 जो हमने मार्क्स दिए हैं वो इसके लिए मैच करता है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू होते ही यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेड बी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर कंपाइलर अब इस जो नेक्स्ट वाला जो एल्स इफ है इसको चेक नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट जो एल्स इफ है उसे भी चेक नहीं करेगा, और जो एल्स ब्लॉक है उसे भी चेक नहीं करेगा, वो सीधे सीधे वही हमारा आउटपुट प्रिंट कर देगा कि ग्रेड इज बी। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, जो भी कंडीशन ट्रू होती है वो कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में आज अपन सिर्फ एल्स इफ, इफ एल्स और एल्स इफ ही पढ़ पाए। इसके अलावा अभी इसका एक अल्टरनेट होता है कंडीशनल ऑपरेटर लगा करके, और इटरेटिव प्रोग्रामिंग अभी हमें बाकी रह गई, और साथ में स्विच केस भी अब नेक्स्ट में हम या तो इसे कंप्लीट करेंगे, स्विच केस और ये जो कंस्ट्रक्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे।
मैडम आज के मार्गदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके मैडम, ओके थैंक यू।
विद्यार्थी मित्र मंडळींनो, आजच्या कार्यक्रमामध्ये जगज्योती माहुल मॅडम यांनी आपल्याला प्रोग्रामिंग कन्स्ट्रक्ट इन जावा याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केलेलं आहे। ऐकत रहा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचं यशवाणी, यानंतरचा कार्यक्रम काही क्षणातच।